हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 मई 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि 10 मई, और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, असम राज्य में आज 12 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे, और असम के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ही वापस दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे आज। वहीं मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती पर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, 4000 नियुक्ति आदेश जारी किए। 12 मई आज से ही स्कूल चॉइस फिलिंग शुरू होने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने देश के युवाओं को राहत देते हुए टीचर्स के लिए फाइनली ऑर्डर जारी कर दिया है। और मौसम विभाग का भी कहना है कि आज 12 मई को अगले 14 घंटों के दौरान देश के 11 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी, तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, सोना खरीदने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन क्लास लें, कम तेल का प्रयोग करें, वर्क फ्रॉम होम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार देशवासियों से फिर से वही अपील की है। पीएम मोदी ने देश के नागरिकों से एक बार फिर से अपील करते हुए कहा कि जहां तक संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस, इस तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें, खुद की गाड़ियां, कार, बाइक वगैरह कम चलाएं। पीएम मोदी, ये लगातार दूसरा दिन रहा जब देशवासियों से ये अपील किए हैं। सोना भी कम खरीदें एक साल तक, घर में तेल भी कम खाएं, स्कूल भी ऑनलाइन चलाएं जितना हो सके, कंपनियां वर्क फ्रॉम होम दें। तो प्रधानमंत्री की इस दूसरी बार की अपील पर अब देश में चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि अभी एक दिन पहले भी आपको पता होगा पीएम मोदी ने कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि भारत में तेल के कुएं नहीं है, तो इसलिए गाड़ियों में तेल कम खर्च करें। तो नरेंद्र मोदी के इन बयानों को लेकर अब विपक्ष से कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी। देखिए राहुल गांधी बोले कि देश चलाना मोदी के बस की बात नहीं है, सोना ना खरीदें, विदेश न जाएं, इस तरह की 7 अपीलें उपदेश नहीं बल्कि केंद्र सरकार की नाकामी के सबूत हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी संकट आता है हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की अपील पर यह प्रतिक्रिया की। वैसे ये तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री ने आखिर ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जंग चल रही है, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है और इस वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल, क्रूड ऑयल की सप्लाई ठप पड़ी है। और वहीं बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी की इन अपील के बाद बीते दिन ज्वेलरी कंपनियों के शेयर भी 10% तक टूट गए, क्योंकि पीएम मोदी ने सोने चांदी की ज्वेलरी को लेकर भी ये अपील की है कि अगले एक साल तक शादी ब्याह वगैरह भी हो तो भी सोना न खरीदें। तो प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद अब रिपोर्ट आ रही कि सराफा मार्केट में ज्वेलरी की डिमांड 10% तक घट सकती है। और पीएम मोदी की इस सोना न खरीदने की अपील के बाद देश भर के सराफा कारोबारी भी चिंता में आए। मौजूदा संकट के समय मांग घटाने के बजाय सरकार को उन्होंने दूसरी सलाह दी है। केंद्र सरकार की इस अपील पर ज्वेलर्स एसोसिएशन ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मांग को खत्म करने के बजाय घरेलू स्तर पर पड़े सोने को मुख्य धारा में लाना और उसकी रिसाइकलिंग करना एक बेहतर समाधान है, क्योंकि पीएम मोदी के इस बयान के एक दिन बाद ही सोने की चमक फीकी पड़ी। खाद्य तेल के मामले में भी गिरावट देखने को मिली। देश भर के कई अलग अलग कारोबारी चिंता में आए प्रधानमंत्री के इन बयानों की वजह से। सोना चांदी के भाव में भी कुछ गिरावट देखने को मिली। देखिए आप, सोना 716 रुपए गिरकर 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। चांदी में थोड़ी बढ़त देखने को मिली, 600 रुपए बढ़कर 2,56,000 रुपए प्रति किलो चल रही है अभी चांदी है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं केंद्र सरकार की एक और सफाई सामने आ रही है कि पीएम मोदी की अपील के बाद सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि देश में सभी तरह के ईंधन और ऊर्जा का पर्याप्त भंडार है। अभी तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से यह क्लियरिफिकेशन दिया गया कि अभी फिलहाल हमारे देश में इस समय पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कमी नहीं है, लेकिन अगर 1-2 महीने और युद्ध जैसे हालात रहे तो फिर संकट आ सकता है ऐसा। और पीएम मोदी की इन अपील के बाद बीते दिन सोशल मीडिया पर कई जगहों पर ऐसी खबरें भी चलने लगी कि पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। तो इन खबरों को भी सरकार ने एक बार फिर से भ्रामक बताया और कहा कि फिलहाल पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ाने का सरकार कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं रखे हुए है। हालांकि फिर भी मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही कि 15 मई के बाद देशवासियों को महंगाई का बड़ा झटका लग सकता है। ना सिर्फ पेट्रोल, डीजल बल्कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर भी महंगे हो सकते हैं 15 मई के बाद से। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पेट्रोल, डीजल के दाम 4-5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं, जबकि एलपीजी गैस सिलेंडर भी 40-50 रुपए तक महंगा हो सकता है ऐसा। अभी मौजूदा समय में हमारे देश में अगर स्टॉक की बात करें तो देश में 45 दिन की एलपीजी का स्टॉक पड़ा है, जबकि 2 महीने यानी 60 दिन का तेल का स्टॉक भी पड़ा है। तो अगर ये स्टॉक कम पड़ता गया तो फिर महंगा हो सकता है पेट्रोल, डीजल, जाहिर सी बात है, क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियां ऑलरेडी घाटे में चल रही है। मैंने आपको अभी एक दिन पहले रिपोर्ट्स भी बताई थी। और जो पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम की बात कही है ना दोस्तों, तो इस पर भी एक खबर में रिपोर्ट आ रही, देखिए आप, कि अगर हमारे देश में 1 करोड़ लोग भी सप्ताह में 3 दिन वर्क फ्रॉम होम करें तो 70,000 करोड़ रुपए बचेंगे, इतनी तेल की खपत कम होगी। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पीएम मोदी के इस बयान पर अगर कंपनियां अमल करती हैं और उन कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया जाता है जिनका ऑफिस आना इतना जरूरी आवश्यक नहीं है, तो इससे भी हमारे देश में तेल की अच्छी खासी बचत हो सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर पर भी एक बड़ा फैसला लिया, अब इन उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा सब्सिडी का लाभ। जी हाँ, बढ़ते एलपीजी संकट के बीच सरकार ने एलपीजी सब्सिडी को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी है। अब तय लिमिट से ज्यादा कमाई वाले परिवारों को सख्ती से SMS भेजकर जानकारी अपडेट करने को कहा जा रहा है और तय समय में जवाब नहीं देने पर गैस सब्सिडी बंद भी की जा सकती है। किन परिवारों को ये SMS आ रहा और अगर आपको भी SMS आया तो उसके बाद क्या करें, तो इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक वेरीफाइड CA ने पोस्ट शेयर किया। ये देख सकते हैं आप पोस्ट में क्या है एग्जैक्टली। तो सरकार जो है वो इनकम टैक्स रिकॉर्ड चेक कर रही है लोगों के। जिन लोगों की इनकम टैक्स लिमिट बढ़ी हुई है, सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा आप कमाते हो, तो इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपको LPG सब्सिडी छोड़ने के लिए डिटेल भरनी होगी। वैसे भी सरकार पहले भी कई बार ये साफ कर चुकी है कि 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा सालाना आय वाले परिवार पहल योजना के तहत LPG सब्सिडी पाने के पात्र नहीं है। और क्योंकि अभी तो LPG का संकट चल रहा है ऑलरेडी, यही वजह की सरकार एक बार फिर से लोगों को SMS भेज कर ये वेरीफाई करवा रही है। ऐसे में कमाई का पता कैसे लगाएगी सरकार? आपके पैन कार्ड नंबर से आपके इनकम टैक्स का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, आधार कार्ड से लिंक परिवार की जानकारी और LPG उपभोक्ता डेटाबेस का मिलान कर रही है सरकार। तो अगर आपको भी इस तरह का SMS आता है तो आपको क्या करने का रहेगा? दिए गए लिंक्स की ऑफिशियल ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद आपको KYC डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने की कहा जाए तो वो सबमिट करना होगा। ऐसा अगर आप तय समय में जवाब नहीं भी दोगे तो भी आपकी ऑटोमेटिक सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। बीते दिन PM नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। यहाँ PM मोदी ने 11 तीर्थों के पवित्र जल से सोमनाथ का कुंभाभिषेक भी किया। PM मोदी ने कहा कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण किया जाएगा, भारत की स्वतंत्र चेतना और प्राचीन गौरव की पुनर्स्थापना का उद्घोष किया। PM मोदी ने खुद को दादा सोमनाथ का अनन्य भक्त भी बताया। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे होने के मौके पर PM मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दरमियान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत की तकनीक पर बात करते हुए राजस्थान के पोखरण के परमाणु परीक्षण पर भी कहा कि इस परीक्षण ने दुनिया को हिला दिया था। विश्व भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, लेकिन हम डटे रहे, डरे नहीं। बीते दिन आपको पता होगा भारत का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस था, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, तो इस पर PM मोदी ने यह बयान दिया। चलिए अगली खबर आ रही। कच्चे तेल की कीमतों पर टिकी भारत के विकास की रफ्तार, 2030 तक खिसक सकता है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना भी। जी हाँ, SBI द्वारा जारी लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इस साल वित्त वर्ष 2026-27 में भी भारत की विकास दर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करेगी, जिससे रुपए में गिरावट और महंगाई पर भी असर पड़ेगा। यानी यदि क्रूड ऑयल महंगा रहता है तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य भारत ने तय किया 2030 तक बनने का, वो लक्ष्य भी खिसक सकता है। अभी मौजूदा समय में क्रूड ऑयल की कीमतें $100 के पार चल रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय की खुद डेटा के मुताबिक अप्रैल और मई में अभी तक भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से औसतन $109 प्रति बैरल की दर से कच्चे तेल खरीदा है, तो काफी महंगा मिल रहा है अभी क्रूड ऑयल। और अगर ये क्रूड ऑयल महंगा बना रहा तो भारत की विकास रफ्तार और गिर सकती है। ऐसा क्योंकि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ईरान अमेरिका इजराइल जंग की वजह से ना सिर्फ कच्चा तेल महंगा हो रहा है बल्कि दिनों दिन भारतीय रुपये में भी गिरावट होती जा रही है। बीते दिन भी देखिए आप, डॉलर के मुकाबले कुछ पैसे और टूटकर रुपया ₹95.31 प्रति डॉलर के नए लो पर पहुंच चुका है। ये गूगल का लाइव प्राइस रेट भी आप देख सकते हैं, $1 के मुकाबले अभी ₹95.31 पर चल रहा है। हालांकि SBI की रिसर्च में एक अच्छी रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि दुनिया में वैश्विक संकट चल रहा है उसके बावजूद अभी तक के समय में तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत उड़ान पर बनी हुई है। यही वजह है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 में 6.6% GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया है। SBI रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत खपत और क्रेडिट ग्रोथ से भारत की अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा, बूस्टअप मिलेगा। ऐसा तो कहने का मतलब देश की आर्थिक वृद्धि दर 2026-27 में 6.5% से भी ऊपर रहने का अनुमान जताया है SBI रिसर्च ने। चलिए SBI की बात हो रही है तो एक और अपडेट आपको बता दूं। भारतीय स्टेट बैंक कर्ज वसूली के लिए यानी लोन के पैसों का कलेक्शन करने के लिए 4,000 नई भर्तियां करेगा। खुद SBI के चेयरमैन बोले कि लोन बुक को सुरक्षित रखना ही हमारा लक्ष्य है, तो जल्द ही SBI की तरफ से ये नई नौकरियां भी निकाली जाएगी। फील्ड पर तैनात होगी नई टीम। NPA को काबू में रखने के लिए SBI का ये नया प्लान है। अच्छा, वैसे SBI बैंक की बात हो ही रही है तो देखिए, बैंकिंग सेक्टर को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक की नई पहल, अब बैंक में कर्मचारी लंच टाइम का बहाना नहीं बना पाएंगे। अगर बैंक कर्मचारी आपका काम करने में टालम टोल करें तो सीधे आप कंप्लेन करके उन्हें सबक सिखा सकेंगे, RBI खुद एक्शन लेगा। बैंक कर्मचारी अब आपको लंच टाइम चल रहा बाद में आना इस तरह के कहकर टालम टाल नहीं कर पाएंगे। हाल ही में रिजर्व बैंक ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, RBI नियमों के मुताबिक बैंकों में ग्राहकों के लिए कोई आधिकारिक लंच ब्रेक होता ही नहीं है। बैंक कर्मचारियों के लिए ऑफिशियल लंच टाइम नहीं होता है उनके ड्यूटी टाइम पीरियड में, तो आप इस मुद्दे पर बैंक मैनेजर से सीधे सवाल कर सकते हैं उसी ब्रांच में, तो मैनेजर आपकी कंप्लेंट सुनेगा। और अगर 30 दिन के अंदर भी आपके किसी तरह की बैंकिंग शिकायत का समाधान नहीं हो तो आप सीधा RBI के बैंकिंग लोकपाल के पास कंप्लेन कर सकते हैं। और इसके लिए सिंपल तरीका है, या तो आप इस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर फाइल ए कंप्लेंट बटन पर क्लिक करें, या आप इस ईमेल पर भी अपनी परेशानी लिखकर भेज सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 1-444-8 डायल करके भी अपनी बैंकिंग समस्या से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, है ना। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। देश के उद्योगपति गौतम अडानी बोले कि एनर्जी इंटेलिजेंस को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। अडानी ग्रुप भारत में डेटा सेंटर्स के लिए 9.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। उन्होंने ये भी बड़ी घोषणा की है। और बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में बोतल बंद पानी में मिला कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। कई बड़े बड़े ब्रांड का जो पानी आता है उनका बोतल बंद पानी जांच में फेल पाया गया। अब विभाग की तरफ से कार्यवाही के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। और खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग जमानत याचिकाओं को लेकर कुछ सुझाव दिए। कहा कि हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए ऑटोमेटिक लिस्टिंग सिस्टम बनाया जाए ताकि तय समय में फैसला आए। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन सोमवार को देश के अलग अलग हाई कोर्ट में जमानत याचिकाओं की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई और एक मजबूत सिस्टम व्यवस्था बनाने का सुझाव भी दिया। वहीं बीते दिन आपको बता होगा नेशनल टेक्नोलॉजी डे था। इस मौके पर IIT खड़गपुर, दिल्ली, मद्रास समेत कई जगहों पर कार्यक्रम हुए और इनके डायरेक्टर्स सीनियर्स का कहना है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में सिर्फ चैटबॉट नहीं है, यह खेत, स्कूल, अस्पताल तक पहुंच रहा है। 3 IIT डायरेक्टर्स और भासिनी CEO ने देश के भविष्य के टेक्नोलॉजी मिशन के बारे में भी युवाओं को बताया। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश में 1 जुलाई 2026 से VBG रामजी बिल फाइनली लागू हो जाएगा, जो कि पुरानी मनरेगा योजना की जगह लेगा। केंद्र सरकार की तरफ से ऑफिशियली घोषणा कर दी गई है और सरकार ने ये भी कहा कि ये नया बिल लागू होने के बाद भी इन बदलावों से देश के मजदूरों पर, श्रमिकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है कि VBG रामजी बिल यानी नया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा, जो कि पुरानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट यानी मनरेगा योजना को खत्म करके इसकी जगह लागू किया जाएगा। हाल ही में कुछ महीनों पहले आपको बताओ जब VBG रामजी बिल को सदन से पास किया गया तब इसका काफी विरोध भी हुआ, विपक्ष ने विरोध किया। तो इस बिल की 3 प्रमुख खास बातें क्या होगी देख सकते हैं आप। एक तो इसमें रोजगार की गारंटी को 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये होगा कि पहले इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन अब राज्यों को भी 10-40% तक हिस्सेदारी देनी होगी। और बुआई कटाई किसानों के फसलों के वर्किंग सीजन के टाइम 60 दिन के समय इस योजना में रोजगार नहीं मिलेगा ताकि मजदूर उपलब्ध रह सके। जबकि पुरानी मनरेगा योजना क्या है इस बारे में भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए, अपनी अफसर पत्नी से विवाद के बाद सुर्खियों में आए एक सफाई कर्मी आलोक मौर्य ने अब बड़ी घोषणा की है। SDM ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य अब राजनीति में एंट्री लेंगे और उन्होंने कहा कि वो पत्नी पीड़ितों की आवाज उठाएंगे। वहीं खबर है, महाराष्ट्र के TCS कंपनी नासिक केस में रिपोर्ट सामने आ रही कि महिलाओं ने डर की वजह से शिकायत नहीं की, बल्कि NCW रिपोर्ट में सामने आया कि महिलाओं को ट्रांसफर और नौकरी जाने का खतरा था, इस वजह से उन्होंने शिकायतें की। कुछ CCTV भी बंद पड़े मिले। TCS की नासिक यूनिट में हाल ही में आपको बताऊंगा महिला कर्मचारियों के साथ इस तरह के धर्म परिवर्तन और जबरन यौन हिंसा के मामले देखने को मिले थे। वहीं बॉलीवुड से खबर देखिए, ठग सुकेश के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन को बड़ा झटका लगा। अभिनेत्री की सरकारी गवाह बनने की मांग का ईडी ने विरोध किया। वहीं खबर है, फिर होगी दुनिया की सबसे बड़ी चोरी, नेटफ्लिक्स ला रहा मनी हाइस्ट का नया सीजन। जी हाँ, ये एक वेब सीरीज है जिसमें प्रोफेसर चोरी का प्लान करते हैं, अगर आपने देखी होगी तो नेटफ्लिक्स ने इस वेब सीरीज का एक नया टीजर जारी किया है जिसमें ये हिंट दिया गया कि मनी हाइस्ट का सीजन 6 भी आ सकता है। और भारत के लिए एक अच्छी खबर देखिए, भारत के ऊर्जा क्षेत्र में इतिहास रचने जा रहा नया बिहार। बिहार के इस जिले में 56,000 करोड़ का नया न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने जा रही NTPC कंपनी है। ये सरकारी कंपनी ने बिहार के बांका जिले में 2.5 गीगावाट से भी ज्यादा क्षमता वाला बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं दोस्तों ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। खबर आ रही कि हॉर्मुज रूट में फिर से तनाव बढ़ सकता है। सीज फायर बहुत कमजोर स्थिति में चल रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान का नया प्रस्ताव पसंद नहीं आया। ट्रंप ने ईरान का जंग रोकने का प्रस्ताव ही ठुकरा दिया। वो बोले कि मुझे पसंद नहीं आया, अमेरिका ने एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने की शर्त रखी है ईरान के सामने। कुल मिलाकर अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे और ईरान उस शर्त पर एग्री नहीं हो रहा है। यही वजह है कि ये युद्ध रुकने की बजाय और लंबा खींचता दिख रहा है। और इस बीच खबर आ रही है कि ईरान को अब भारत से भी मदद की उम्मीद नजर आ रही है। US से जंग के बीच नई दिल्ली आ रहे ईरानी विदेश मंत्री। बस कुछ ही दिन में भारत में ब्रिक्स समिट होने वाला है और इसमें ईरान के विदेश मंत्री भी आएंगे। भारत में 14-15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में ईरान, रूस, चीन समेत अन्य देशों के कई बड़े प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। तो मिडिल ईस्ट, पश्चिम एशिया में जो ये संकट चल रहा है, इस बीच भारत भी अलर्ट मोड पर हुआ। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग भी की इस मुद्दे पर। और इस बीच देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई अभी जिंदा है लेकिन वो बंकर में छिपे हुए हैं। लेकिन उनको लेकर इजरायली PM का कहना है कि उनकी सत्ता पर पिता जैसी पकड़ नहीं है, ईरानी जनता के विद्रोह का भी डर है नए सुप्रीम लीडर को। वहीं नेतन्याहू ने ईरान युद्ध पर पहली बार अपने पत्ते खोले। वो बोले कि असली मिशन तो अभी बाकी है, ट्रंप और मैं जानते थे हमले का आगे का प्लान क्या होगा। और इस बीच खबर आ रही दोस्तों कि US और चाइना यानी अमेरिका चीन के रिश्तों में भी नया मोड़ आया। 9 साल बाद चीन जाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इस दरमियान व्यापार और ताइवान समेत कई मुद्दों पर बड़ी बातचीत होगी। खबर के मुताबिक ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन का दौरा करेंगे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इन कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और बड़ी खबर देखिए, ईरान जंग के बाद पूरी दुनिया बदलती नजर आ रही। हॉर्मुज रूट से उठी आग ने ग्लोबल सियासत का नक्शा ही बदल दिया। इस जंग ने पूरी दुनिया की राजनीति को भी हिलाकर रख दिया है। हालांकि इस बीच कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि बड़े युद्ध से बचना चाहता है यूएस यानी अमेरिका खुद भी, और ईरान ने भी अपनी कूटनीतिक सक्रियता दिखाई है इस युद्ध के हालातों में। अभी एक दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी कि अमेरिका और ईरान अगले सप्ताह फिर से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी बातचीत कर सकते हैं, तो ये भी अपडेट चल रहा है। बाकी फिलहाल तो ट्रंप ने ईरान का जंग रोकने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, तो देखते हैं इस मुद्दे पर आगे के क्या अपडेट्स आएंगे। मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तभी तो मैं आपको रोजाना कहता रहता हूं दोस्तों कि अगर आप अभी तक भी DLS न्यूज से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, देश में मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई राज्यों में बारिश, तो राजस्थान गुजरात में भयंकर गर्मी और लू का तांडव। देखिए अभी राजस्थान का बाड़मेर शहर देश में सबसे गर्म जिला चल रहा है, जिसका तापमान 46 डिग्री से भी ऊपर पहुंच चुका है 47 के लगभग। जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार, इन राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट है। और उत्तराखंड में भी चार धाम यात्रियों से यात्रा टालने की अपील की है, क्योंकि दो दिन मौसम बहुत खराब रहने वाला है। तो कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलेगी। हालांकि भोपाल, इंदौर संभाग में तेज गर्मी रहेगी। वहीं राजस्थान में भी भयंकर गर्मी और लू के बीच हनुमानगढ़ में बारिश हुई, श्रीगंगानगर में ओले गिरे। बाड़मेर देश में सबसे गर्म शहर रहा, जयपुर समेत 6 जिलों में बदलेगा मौसम। बिहार के भी 19 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी और 15 मई तक बिहार में ऐसा ही बारिश भरा मौसम रहेगा। पंजाब में भी अब 4 दिन तक आंधी बारिश का अलर्ट है, दिन में तेज हवाएं चलेगी तो लोगों को लू से थोड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा में भी मौसम बदला, सिरसा, हिसार समेत 3 जिलों में बारिश हुई, तो तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ में भी अब 5 दिन मौसम खराब रहेगा, क्योंकि राजस्थान और बंगाल में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम बना है, जिसका असर दिखेगा। तो 40 की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी और बिजली गिरने का भी खतरा है। पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में सड़कें नदियां बन गई, इतना पानी भर गया, तेज बारिश हुई, देख सकते हैं आप। 9 जिलों में बारिश की चेतावनी है। श्रद्धालुओं से चारधाम यात्रा भी टालने की अपील की है प्रशासन ने, क्योंकि आज और बिगड़ेगा मौसम। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी तूफान का कहर देखने को मिल रहा। कुल्लू में 5 घरों और 8 गौशालाओं की छतें भी उखड़ गई, इतनी भयंकर तूफानी हवाएं चली है। रामपुर में एक टिप्पर पर पेड़ गिर गया, 4 जिलों में बारिश का भी अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन की राहत के बाद फिर से मौसम बदल गया है। बाकी अगले 2 दिन, आज और कल 12 मई 13 मई को मौसम का हाल क्या रहेगा, देख सकते हैं आप जानकारी। और देश के अलग अलग राज्यों में अभी तापमान क्या चल रहा है, इसकी भी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में, कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली, 1313 अंक की। अभी सेंसेक्स 76,000 पर आ चुका वापस, निफ्टी भी 350 अंक टूटा। वहीं केनरा बैंक का चौथी तिमाही का मुनाफा 10% बढ़कर 4500 करोड़ रुपए रहा। और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ी खबर आ रही, इक्विटी और SIP में लोगों की दिलचस्पी घटी है। रिपोर्ट के मुताबिक अब लोग गोल्ड और डेट फंड्स में ज्यादा निवेश कर रहे हैं। बीते महीने अप्रैल के ये आंकड़े भी आप देख सकते हैं। वहीं भारत के लिए अच्छी खबर देखिए, भारतीय निर्माण उपकरण उद्योग ने नया कीर्तिमान रचा। निर्यात यानी एक्सपोर्ट में 31.5% की शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली। और भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर भी रिपोर्ट आ रही कि अगले दौर की बातचीत के लिए अमेरिकी टीम के भारत आने की उम्मीद है। वहीं आदिनाथ एग्रो कंपनी ने अपनी रीब्रांडिंग की है, अब इसे एडिनोवा के नाम से जाना जाएगा। और खबर है पेंशन, अब म्यूचुअल फंड जितनी आसान होगी, UPI से खाता खुलेगा, बुढ़ापे को डबल कवर मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन स्कीम्स और इससे जुड़े अकाउंट्स ओपनिंग प्रोसेस को आसान कर दिया, जानकारी आप देख सकते हैं। और कंपनियों की पॉलिसी पर खबर आ रही, कंपनियों में अब 25% तक हो सकेंगे प्रशिक्षु। सस्ते श्रम का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार ने नई शर्तें भी रखी है। केंद्र सरकार कंपनियों में शिक्षार्थियों यानी जो इंटर्नशिप वगैरह करते हैं उनकी सीमा 25% तक बढ़ाने की विचार कर रही है। जल्द ही इसको लेकर नए नियम लागू किए जाएंगे, सरकार ने कंपनियों को लेकर ये प्रपोजल भी रखा है, देख सकते हैं। और खबर है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर महाराष्ट्र में लगाएगी नया संयंत्र, 2029 में उत्पादन शुरू हो जाएगा, करीब 300 अरब येन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में, कुछ पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें देखिए आप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। TMC 31 सीटों के नतीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची और याचिका में कहा कि इन सीटों पर जीत का अंतर SIR में कटे वोटों से भी कम है। तो कोर्ट ने कहा कि आप इस मुद्दे को लेकर नई याचिकाएं लगाएं, क्योंकि बंगाल में SIR के डेटा देखिए आप, SIR से पहले 7,66,00,000 वोटर्स थे, जबकि SIR के बाद 6,76,00,000 वोटर्स ही रह गए हैं। लगभग 90,00,000 से भी ज्यादा वोटर्स के नाम कटे थे SIR अभियान में। तो बंगाल की पूर्व TMC यानी ममता सरकार का ये कहना कि SIR की वजह से भाजपा की जीत हुई है ऐसा। वहीं इधर देखिए, बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही कैबिनेट बैठक में ताबड़तोड़ एक्शन लिया, ममता सरकार में नियुक्त सभी मनोनीत अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। बीते दिन CM शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें टोटल 6 बड़े फैसले लिए गए। एक तो बांग्लादेश सीमा पर फेसिंग के लिए अगले 45 दिन में BSF को जमीन दे दी जाएगी, बॉर्डर फेसिंग के लिए जवानों को ये जमीन मिलेगी। इसके अलावा बंगाल की भाजपा सरकार का एक और फैसला, जल्द ही बंगाल में भी नए आपराधिक कानून लागू होंगे। और मुख्यमंत्री का कहना कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना पर भी काम शुरू हो चुका है बंगाल में। और भी शुभेंदु कैबिनेट की बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए, ये कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिस कर्मियों को भी गायों की तस्करी पर निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा देखिए, महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए, बसों में फ्री सफर समेत शुभेंदु अधिकारी ने महिलाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। कहा कि बंगाल में जल्द ही ये भी नई योजनाएं शुरू की जाएगी। और खबर आ रही कि बंगाल में मंत्रियों को भी विभाग बांट दिए गए, गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु ने अपने पास रखा। दिलीप घोष को पंचायती राज मंत्रालय दिया गया, अग्नि मित्रा को महिला बाल विकास मंत्रालय और निशित को युवा कल्याण विभाग दिया गया। और बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बनाया गया राज्य का मुख्य सचिव। TMC ने कहा कि ये एक और BJP की नई चाल है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं, जो राज्य के मुख्य सचिव थे, चीफ इलेक्शन अफसर को ये बनाया नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा फैसला लिया। बताया जा रहा है कि इन्हीं की निगरानी में बंगाल के चुनाव संपन्न हुए हैं, तो इस वजह से बंगाल सरकार ने इनको नियुक्त कर दिया है। वहीं देखिए, तमिलनाडु में भी 17वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। मुख्यमंत्री विजय उदयनिधि और EPS ने सदस्य पद की शपथ भी ली। अच्छा, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय की विनम्रता देखिए जरा, कितने हम्बल है वो, उनकी हम्बलनेस देखिए। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जब मुख्यमंत्री विजय ने स्टाफ कर्मचारियों की टेबल उठाने में मदद की। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान का ये वीडियो है। स्टाफ के कर्मचारी टेबल उठा रहे थे, तो खुद विजय ने टेबल उठाकर उनकी मदद की। बगल में खड़े राहुल गांधी भी ये देखकर हैरान हो गए। और विजय की इसी विनम्रता पर, उनके इस ग्रेटिट्यूड पर सोशल मीडिया पर फैंस ने भी उनकी खूब तारीफ की है। हालांकि इधर केरलम राज्य में अभी भी सस्पेंस बरकरार है मुख्यमंत्री के पद को लेकर। वेणुगोपाल राहुल गांधी की पसंद है। कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को दिल्ली भी बुलाया। IUML बोली कि लोग शादियों में पूछते हैं नया मुख्यमंत्री कौन होगा। वहीं देखिए, पंजाब में भाजपा के 2 ऑफिसों पर हमला हुआ। एक वीडियो आ रहा कि लाठी डंडे लेकर घुसे लोग, तोड़फोड़ की, पथराव किया, दीवारों और पोस्टरों पर इंक भी फेंकी। ओके, और चलिए पॉलिटिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में चलती ट्रेन में 2 और अस्पताल में 1 महिला की हत्या करने वाला साइको किलर निकला एक पूर्व सैनिक। UP के चंदौली जिले का यह मामला सामने आया। वहीं हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 5 लोग गुजरात के थे। ये मनाली से डलहौजी घूमने जा रहे थे। मुख्यमंत्री ने भी इस घटना पर शोक जताया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में ये बड़ा हादसा हुआ, इनकी इनोवा कार खाई में गिर गई, जिससे ये 6 पर्यटकों की जान चली गई। और खबर है, मध्य प्रदेश में जो क्रूज हादसा हुआ था, इसकी जांच अब न्यायिक आयोग करेगा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस संजय द्विवेदी इसके चीफ बने, 5 बिंदुओं पर 3 महीने में रिपोर्ट देंगे। वहीं एक श्रद्धांजलि देखिए, साउथ इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा। 31 साल की उम्र में के भरत कांत ने दुनिया को अलविदा कहा। जी हां, तेलुगु इंडस्ट्री के लिए ये सबसे बड़ा झटका है। एक हादसे में 2 सितारों की मौत हो गई, 31 साल के एक्टर की जान चली गई। इनकी कार के एक्सीडेंट में एक तो भरत कांत का निधन हो गया, एक उनके दोस्त साई त्रिलोक की भी इसी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दोनों की उम्र 31 साल थी। बताया जा रहा है कि इनकी कार ट्रक से टकरा गई थी, इस वजह से इनका निधन हो गया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और एक बड़े सड़क हादसे की घटना देखिए, राजस्थान में एक्सीडेंट में मौसेरे भाइयों समेत 3 लोगों की जान चली गई। चित्तौड़गढ़ जिले में ये सड़क हादसा हुआ। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई मध्य प्रदेश में, पेट्रोल पंप पर भीषण आग लगी, 12 लोग झुलस गए। राजगढ़ में ये आग की घटना हुई, एक की तो हालत काफी गंभीर चल रही है। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि बाइक में पेट्रोल डालते ही आग भड़की, 12 लोग झुलस गए, 5 धमाके हुए, दूर दूर तक से आग की लपटें दिखी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर में अभी बीती देर रात पेट्रोल पंप पर यह भीषण आग लगने की घटना देखने को मिली है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर का भी यह मामला देखिए, 5 बसों में आग लगी, 4 धमाके हुए। अवैध पार्किंग में वेल्डिंग करते दौरान यह बड़ा हादसा हुआ। चश्मदीद बोले कि गैस सिलेंडर भी फटे हैं। इंदौर के नवलखा इलाके में ये 5 खड़ी हुई बसों में आग लग गई। गनीमत रही कि इनमें यात्री सवार नहीं थे, इस वजह से किसी की जनहानि नहीं हुई। और बड़ी खबर देखिए, एक सावधानी भरी चेतावनी भरी खबर आपको बताता हूँ। हरियाणा के जिंद में आजकल अपराधी बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं। नशीला पदार्थ सुंघाकर एक महिला से भी लूट की घटना सामने आई है। और एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय हादसे की खबर देखिए, पाकिस्तान में भी भीषण हादसा हुआ। गहरी खाई में गिरी वैन, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हो गए। शादी में शामिल होने जा रहे थे ये लोग। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज की बात हो ही रही है, तो कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, नेपाल जाने वाले जरा ध्यान दें, अब आसानी से नेपाल में एंट्री नहीं मिलेगी भारतीयों को। नेपाल की नई बालियन सरकार ने कुछ कड़े नियम भी लागू कर दिए हैं। अब नेपाल में एंट्री के लिए पहचान पत्र पत्र अनिवार्य होगा। बिना दस्तावेज वाले लोगों को बॉर्डर से लौटाया जा रहा। सीमा पर एसएसबी और नेपाल पुलिस की सख्त जांच भी जारी है। नेपाल की बालियन सरकार ने बड़ा फरमान जारी करते हुए कहा कि नेपाल में आईडी कार्ड के बिना भारतीयों की एंट्री पर अब बैन रहेगा और नेपाल सरकार का कहना कि इसके पीछे रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध घुसपैठ को रोकने का मकसद है। अच्छा, न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि नेपाल में भारतीय लोगों की गाड़ी वाहन ले जाने का नियम भी बदल चुका है। अब नेपाल जाने वाले भारतीय वाहनों के लिए भी पहचान पत्र ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होगा। इसके अलावा अधिकतम 30 दिन एक महीना ही आप नेपाल में अपनी गाड़ी को रख पाएंगे। ऐसा तो नेपाल में भी अब एंट्री आसान नहीं होगी। बालियन सरकार ने बच्चों के लिए भी कुछ नियम लागू कर दिए हैं। एक तो जो भारत से नेपाल जा रहे हैं उनके लिए प्रवेश करने के लिए वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट वगैरह ये अनिवार्य कर दिया है। और 15 साल से कम आयु के बच्चों के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल आईडी दिखाना अनिवार्य होगा। यदि किसी के पास पहचान पत्र नहीं है तो उन्हें बॉर्डर से ही वापस भेजा जा रहा है। ऐसा इस नियम के बाद नेपाल सीमा पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिली है। हालांकि नेपाल का कहना कि ये नियम भारतीय लोगों के लिए नहीं बल्कि नेपाल समेत अन्य नागरिकों पर भी लागू है। ऐसा और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय दवाओं पर जो नेपाल ने अड़ंगे लगाए इस वजह से नेपाल में अभी दवाओं का भी भारी संकट देखने को मिल रहा है। जीवन रक्षक औषधियों की घोर कमी का खतरा बढ़ रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हंता वायरस के संपर्क में आए 17 यात्री अमेरिका लाए गए। उन्हें 42 दिन के लिए क्वारंटीन में भेजा गया है क्योंकि इस वायरस से किडनी फेल होने का खतरा रहता है और कोरोना की तरह ये भी महामारी ना बन जाए, इसलिए इनका पहले ही क्वारंटीन कर दिया गया है। जो जहाज पर आपको पता होगा हंता वायरस में संक्रमित कुछ लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद अब अमेरिका ने ये एक्शन लिया। हालांकि हंता वायरस संकट के बीच भारत के लिए एक राहत की खबर आ रही है। एमवी होडियंस पर भारतीय क्रू सुरक्षित है। भारतीय दूतावास बोला कि दोनों स्वस्थ और बिना लक्षण के हैं। वहीं जापान में तो एक नई पहल देखिए। हंता वायरस और इस तरह की बीमारी वाली महामारियों से रक्षा के लिए देवताओं के रथ सड़कों पर उतारे हैं जापानी लोगों ने। वहां की संस्कृति में एक्चुअली 300 साल पुरानी इस तरह की परंपरा है। ये एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। जब भी बीमारियां, खतरनाक वायरस वगैरह का संकट आता है तो जापानी लोगों का मानना है कि इस आयोजन से इस तरह के वायरस और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। ऐसा वहीं खबर देखिए। ब्रिटेन ने रूस पर लगाए नए प्रतिबंध। शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के लिए 85 व्यक्तियों और संस्थाओं पर कार्यवाही की है। और महिलाओं को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि महिलाओं के लिए दुनिया में अफगानिस्तान देश सबसे असुरक्षित देश है। हालांकि भारत में महिलाओं की सुरक्षा के मामले में स्थिति में सुधार हुआ है लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी बरकरार है। दुनिया में 177 देशों की सूची में आखिर भारत किस स्थान पर रहा है तो भारत इस मामले में 131वें स्थान पर है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस मामले में संकेत में कुछ सुधार देखने को मिले हैं। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के काशी में 125 साल पुराने मुसाफिर खाने पर चला बुलडोजर। दाल मंडी में 25 मकान भी ढहाए गए। संजय दत्त की नानी का यहां से कनेक्शन है। यूपी वाराणसी में यह प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। वहीं तकनीक पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि टेक्नोलॉजी व एआई अब बुजुर्गों को स्वस्थ और खुश रखेंगे। बुजुर्गों को नई तकनीक सीखने में जागरूकता और स्क्रीन टाइम का ध्यान रखना भी जरूरी है। और खबर है, पंजाब राज्य में निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। इसी महीने 26 मई को वोटिंग होगी, 29 तारीख को नतीजे आएंगे। आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है और चुनाव में प्रत्याशियों के लिए खर्च लिमिट भी लागू की गई। पंजाब निकाय चुनाव का पूरा शेड्यूल क्या होगा देख सकते हैं आप डिटेल्स। और खबर आ रही है कि राजस्थान के 25 लाख श्रमिकों की बढ़ेगी मजदूरी। डीए की तरह महंगाई के हिसाब से हर साल बढ़ोतरी होगी। राजस्थान के श्रमिकों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से ये मजदूरी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है तो 22-45% तक बढ़ोतरी की संभावना नजर आ रही है। वहीं राजस्थान में देखिए, किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। दुर्लभ बिल्ली ने बकरी मारी तो अब सरकार बकरी देगी और राजस्थान राज्य में पहला गोट बैंक भी खुलने जा रहा है। राजस्थान के जैसलमेर में ये वन विभाग की तरफ से नई पहल की गई है। और खबर देखिए, बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। पंचायत में ही मिलेगा ऑन द स्पॉट समाधान। अगर आपकी बिजली से जुड़ी कोई उपभोक्ताओं की समस्या है तो उनका समाधान अब तुरंत मिल पाएगा। 19 मई से बिहार में ये नया अभियान भी शुरू होने जा रहा है। बिहार के कुछ और अपडेट्स देखिए दोस्तों। जमीन की खरीद बिक्री से पहले सीओ देंगे अपडेट की जानकारी। बिहार में 15 मई से ये भी नया सिस्टम लागू होगा जमीन मकान प्लॉट की खरीद बिक्री को लेकर। और बिहार में 5000 बहालियों पर भी बड़ा अपडेट आ रहा। एक्शन में है मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा। वो बोले कि अब रुकी बहालियां नहीं रहेगी पेंडिंग। बिहार के नए योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह ने पदभार संभालते ही महिलाओं को लेकर यह घोषणा की है। वहीं खबर है, बिहार में अब वार्ड सदस्य संभालेंगे मोक्ष धाम कब्रिस्तान का दायित्व। मृत्यु प्रमाण पत्र प्रक्रिया में तेजी आएगी इससे। बिहार सरकार ने यह भी बड़ा फैसला लिया है। और बिहार राज्य के 6 लाख शिक्षकों के लिए भी जरूरी खबर है। सरकार जल्दी नई ट्रांसफर पॉलिसी भी लागू करेगी, ये प्लान है। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली सरकार ने चाइल्ड केयर से निकलने वाले बच्चों के लिए आफ्टर केयर योजना शुरू की है और इसके लिए पहले चरण में 3.5 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया है। अब चाइल्ड केयर से 18 साल की उम्र पूरी कर चुके बच्चों को बाहर आने पर दिल्ली सरकार मदद देगी अलग अलग तरह की। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, महंगाई और जलवायु संकट के बीच वित्त वर्ष 2027 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ब्याज दरों में 2 बार बढ़ोतरी कर सकता है। रिजर्व बैंक की रेपो रेट महंगी हो सकती है तो इससे बैंकों का लोन लेना वगैरह महंगा हो सकता है। चलिए खबर है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए गिग वर्कर्स को करना होगा साल में 90 दिन कम से कम काम और इस उम्र के बाद बीमा वगैरह के फायदे नहीं मिलेंगे। हाल ही में सरकार ने जो नए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू किया, इसके तहत गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए ये नए नियम लागू हो चुके हैं। जैसे आप स्विगी, जोमेटो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, डिलीवरी बॉय वगैरह इनके लिए काम करते हो तो कम से कम 90 या 120 दिन काम करना अनिवार्य होगा, तभी सरकार गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के जो बेनिफिट्स हैं वो देगी। और इसमें भी उम्र निर्धारित की गई है, 60 साल की आयु के बाद ये बेनिफिट भी नहीं मिलेंगे। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है उत्तराखंड के मदरसों के सभी क्रियाकलापों की होगी विस्तृत जांच, अनियमितताओं पर भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी, उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी किया है। और राजधानी दिल्ली में अब अपना घर का सपना पूरा होगा, डीडीए ने खास आवास योजना शुरू की है जिसमें 25% तक छूट मिल रही है। कर्मयोगी आवास योजना 2025 के नाम से ये योजना निकाली गई है दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से। और दिल्ली के 13 जिलों में आज से शुरू होने जा रहा विशेष अभियान, 300 से ज्यादा लोगों को सहायता दी जाएगी। सामाजिक कल्याण विभाग की तरफ से ये नया अभियान चलाया जा रहा है, 15 मई तक चलेगा ये अभियान। और देखिए झारखंड के उद्योग मंत्री ने बड़ा बयान दिया, राजधानी रांची से होगी फैक्ट्रियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, सेफ्टी मानकों की अनदेखी पर फैक्ट्री मालिकों को नापा जाएगा, मतलब सख्त कार्रवाई होगी। वहीं हरियाणा में चौटाला सरकार के जैसे ही फिर बनेगा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, सरकारी और निजी संस्थानों को मजबूत सुरक्षा भी मिलेगी। ये दो नए बल गठित करने की तैयारी की है हरियाणा सरकार की तरफ से। वहीं खबर है चीन और पाकिस्तान की अब खैर नहीं, भारतीय सेना के ड्रोन से बरसेंगे गाइडेड रॉकेट, जीपीएस जाम होने पर भी दुश्मन का होगा काम तमाम। इंडियन आर्मी को दो नए स्वदेशी अत्याधुनिक हथियार मिलने जा रहे हैं जिससे भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी। और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है, खरीफ सीजन में बीज खरीदने पर 50% तक का अनुदान दिया जाएगा, यूपी के कृषि मंत्री की तरफ से घोषणा की गई है। वहीं यूपी के डिग्री कॉलेजों को भी मिलेगी नई पहचान, एनएएसी रैंकिंग से सुधरेगी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता। अब उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेजों को A+, AA++ रेटिंग, इस तरह की रेटिंग दी जाएगी जैसे होटल की रेटिंग होती है ना, 5 स्टार 7 स्टार वैसे। और खबर है सावधान किसान भाई, अब इन किसानों को नहीं मिलेगी 3% ब्याज की छूट, यूपी में डीसीबी की तरफ से यह नया नियम जारी किया गया है। मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक लिमिटेड ने किसानों के लिए नई शर्त लागू कर दी है। बैंक ने स्पष्ट किया कि किसान ऋण पोर्टल के माध्यम से किसी अन्य बैंक से ब्याज अनुदान या क्लेम लेने वाले किसानों को अब जिला सहकारी बैंक की ओर से मिलने वाली 3% ब्याज राहत का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान सरकार ने मूल निवास बनाने के नियमों में बदलाव किया है, अब किराएदार भी बनवा सकेंगे सर्टिफिकेट। और राजस्थान में घर और जमीन खरीदना भी महंगा होगा, एक महीने पहले ही 10% डीएलसी रेट बढ़े थे, अब कलेक्टर दरों को फिर से रिव्यू करेंगे। वहीं देश की पहली बार काउंसिल जहां चुनाव मतगणना पूरी तरह से ऑनलाइन हुआ, ये भी राजस्थान में हुई है। और मध्य प्रदेश में अगली मोहन कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति लाई जाएगी, मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा है। वहीं मध्य प्रदेश में पेयजल योजनाओं में देरी करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। और एमपी में ई फार्मेसी के विरोध में 20 मई को दवा दुकानें बंद रखेंगे कई जिलों में, दवा व्यवसायी व्यापारियों ने घोषणा की है। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को 3 साल पूरे हो चुके हैं, इस महीने 1835 करोड़ रूपए ट्रांसफर करेंगे सीएम मोहन यादव। नरसिंहपुर जिले से ये 36वीं किस्त जारी करेंगे, बताया जा रहा है कि 13 मई को 1500 रूपए की अगली किस्त आ जाएगी कल। और एमपी में फिलहाल शुरू नहीं होंगे परिवहन चेक पोस्ट, हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, छत्तीसगढ़ के युवा फिल्मकार को यूक्रेन में मिलेगा ICJ अवार्ड। 2500 से ज्यादा फिल्मों में चुनी गई छत्तीसगढ़ के भीम चीताराम नाम की ये फिल्म 14 मई को ये अवार्ड प्रदर्शन होगा। और यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि सनातन को मिटाने वाले मिट्टी में मिले काशी विश्वनाथ में ओम का जाप किया, गुजराती महिलाओं ने लगाए नारे वोट फॉर भाई साहब। वहीं उत्तर प्रदेश के मैदानों से निकलेंगे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, 5 स्पोर्ट्स कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, देख सकते हैं आप जानकारी। और बिहार में देखिए पटना में 56 किलोमीटर का एक और लंबा दूसरा मरीन ड्राइव बनने जा रहा, 4 एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, ये 50 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा। वहीं हरियाणा में पेड़ों की सुरक्षा के लिए नया कानून बनेगा, हाईकोर्ट में सरकार ने यह खुलासा किया है। और हरियाणा में सफाई कर्मचारियों ने दूसरी बार अपनी हड़ताल बढ़ाई, 14 मई तक सड़कों पर रहेंगे, संघ बोला कि सरकार हमारी मांगे नहीं सुन रही है। 14,000 टन कचरा भी सड़कों पर फैला हुआ है सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से। और खबर है नाम बदलकर रिलीज होगी लॉरेंस ऑफ पंजाब फिल्म, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि शीर्षक छोड़कर कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, यूएई से लेकर यूरोप तक 5 देशों के दौरे पर जाएंगे जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी सप्ताह शुक्रवार से 6 दिन के 5 दिवसीय विदेश दौरे पर रहेंगे वो। इस दरमियान 18-19 मई को नॉर्वे में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के साथ आज 4 मंत्री भी शपथ लेंगे। वहीं पंजाब मंत्रिमंडल में भी बड़ा फेरबदल हुआ, मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद बदली मान सरकार, 3 मंत्रियों को नए विभाग भी दिए गए। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए पहली बड़ी खबर तो नीट यूजी के पेपर लीक को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। 3 मई को जो देश भर में ये परीक्षा हुई थी तो इसको लेकर बीते दिन से पेपर लीक की भारी खबरें चल रही। इस मामले में 13 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। कैश पेपर में 600 नंबर के सवाल मैच हुए उसके बाद ये मुद्दा उठा। केरल से पेपर राजस्थान पहुंचने का दावा किया जा रहा है। तो राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। और राजस्थान में पेपर लीक के मामले पर डोटासरा ने भी वर्तमान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार इस मामले की जांच कराए। वहीं बीते दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस था, इस मौके पर राजस्थान सरकार ने बड़ी घोषणा की है। राज्य में ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू किया जाएगा, तकनीक के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले युवाओं को ये अवार्ड दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल साथ सरकार ने घोषणा की है। और कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट देखिए, बिहार में एसएपी की 15,821 भर्तियां निकली हुई हैं। रेलवे में 11,127 पदों के लिए आवेदन 15 मई से शुरू होंगे और बिहार में बाल संरक्षण इकाई में 273 ओपनिंग्स हैं। छत्तीसगढ़ में भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। व्यापम में 295 वैकेंसी चल रही है और इस सप्ताह की भी कुछ टॉप जॉब्स ये रही। रेलवे में अप्रेंटिस के 1644 पदों पर भी भर्ती चल रही है। गुजरात पंचायत में 1948 वैकेंसी है। इस सप्ताह टोटल 6438 नौकरियां निकली है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन को नया विस्तार मिलेगा। खान एकेडमी से पढ़ेंगे गणित विज्ञान आईसीटी लैब में 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। वैसे यूपी के 5 स्पोर्ट्स कॉलेजों में भी एडमिशन शुरू हो चुके हैं। कक्षा 6, 9 व 11 की 518 सीटों पर एडमिशन होगा। यह ऑफिशियल पोर्टल पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, मैंने आपको बताया अपडेट। वहीं देखिए, बिहार की बेटी ने हिमाचल में लहराया परचम। 10वीं बोर्ड में 99.29% अंक लाकर साक्षी बनी प्रदेश की 5वीं बोर्ड की टॉपर। और पंजाब बोर्ड का भी 10वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। टॉप 3 में 2 लड़कियां रही, प्राइवेट से पीछे रहे सरकारी स्कूल। पंजाब में एक तो बेटी जो टॉपर्स रही, स्टेट टॉपर, उसके पिता किसान है, वो बोले कि मैं जज बनूंगी। कुछ रिक्शा चलाने वाले और कारपेंटर के बच्चे भी मेरिट में शामिल हुए हैं। मैंने कांग्रेट सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और वहीं एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सरकार ईंधन के रेट बढ़ाने की तैयारी में है। यानी पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस वगैरह महंगा हो सकता है। इंपोर्ट घटाने पर भी विचार किया जा रहा। देर रात पीएमओ और आरबीआई की भी बैठक हुई। तेल कंपनियों को रोजाना 1,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा हो रहा है, तो इस घाटे की भरपाई के लिए केंद्र सरकार इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाने पर विचार कर रही है। क्योंकि अभी आपको बताओ, पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन भी देशवासियों से कहा कि पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, तो हो सकता है जल्दी ईंधन के रेट्स बढ़ जाए। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए। आईपीएल मैच में पंजाब की लगातार चौथी हार हुई। दिल्ली 3 विकेट से जीती। अक्षर और मिलर के अर्धशतक भी लगे। वहीं आईसीसी एनुअल वनडे रैंकिंग में भारत टॉप पोजीशन पर कायम रहा। न्यूजीलैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर आया। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए स्थान परिवर्तन फायदेमंद रहेगा और मकर राशि वालों की भी इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ,